अथ पंचमो अध्याय पंचदशो अध्याय श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरयद्वयम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद वेत् ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरयद्वयम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद वेत् श्री भगवान राज भगवान कहते हैं कि ऊर्ध्वमूल मदशाखम् ऊर्ध्वमूल ऊर्ध्वमान ऊपर की ओर जड़े हैं और अवशाखम शाखाएं नीचे हैं। अश्वत्थम अव्ययम प्राहु एक इस प्रकार का अश्वत्थ वृक्ष है जो वेदों में कहा गया है और छन्नांश से परिणामी और उस वृक्ष की जो पत्ते हैं वो छन्न हैं और यस्तम वेद सवेद वित जो इस वृक्ष को जो जानता है अश्वत्थ वृक्ष को जो जानता है उसको समझ में आ गया कि ये क्या है तो इसके माने वो वेद को जानता है। इतनी बातें इसमें हो गई। एक तो पहले प्राहु प्राहु मैंने कहा गया है, कहा गया कि भगवान कहते हैं कि हम स्वयं नहीं कहते हैं, पूर्व काल से इस प्रकार से कहते चले आ रहे हैं, अन्य लोग जो ऋषि मुनि लोग हैं वो कहते आ रहे हैं, वेद कहते आ रहे हैं, वेद का निरूपण करने वाले वेद की रचना करने वाले भगवान कहते आ रहे हैं। तो जो कहते आ रहे थे मैंने एक प्रामाणिक बात हो गई। कोई व्यक्ति अपनी बात कहने लगे तो ज्यादा प्रामाणिक नहीं होती, लेकिन जब उसको पूर्व लोगों के अनेक लोगों के द्वारा वो बात कही जाती रही है और उसका समर्थन करते हुए बहुत लोग आ रहे हैं इस बात को बोलते हैं तब उसमें प्रामाणिकता आ जाती है। विद्वानों को भी कोटेशन दिए जाते हैं, जब अमुक विद्वान ने ऐसा कहा, अमुक विद्वान ने ऐसा कहा, अमुक ऋषि ने ऐसा कहा, तो इसे कहने से व्यक्ति के चित्त में ये बात चढ़ती, ध्यान देना चाहिए, ये जरूर ठीक होगी बात। लेकिन ये नहीं है कि आंखें बंद करके आप वैसे ही मान लो, पहले तो उसमें विश्वास रखो कि जो बात कही जा रही ठीक लगती है, लेकिन ठीक है तो कैसे ठीक है उसको समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। दोनों बातें, एक तो उसमें श्रद्धापूर्वक स्वीकार भी करो और फिर विचार पूर्वक उसके तात्पर्य को भी समझो। इसलिए अब भगवान उसकी व्याख्या करते हैं, कहते देखो प्राचीन काल के ऋषि कहते आ रहे हैं, वो क्या कहते आ रहे हैं वो हम तुमको अब समझाएंगे। तो एक वृक्ष का नाम लेते हैं, कहते देखो अश्वत्थ वृक्ष का एक वर्णन आता है अपने शास्त्रों में, वो अश्वत्थ वृक्ष कैसा है उसका वर्णन बताते हैं। वेदों में असल में देखें तो अपने शास्त्रों में कुछ वेद में भी और कुछ पुराणों में भी वृक्ष की बात आती रहती है। तीन वृक्षों की चर्चा अपने शास्त्रों में है। एक तो गुलर के पेड़ की चर्चा है, उदंबर कहते हैं उसे, उदंबर गुलर, और दूसरा अश्वत्थ वृक्ष है और तीसरा बट वृक्ष है, जिसको दिन चार में बड़ कहने लगते हैं, बड़ वृक्ष, बड़ पेड़, बट वृक्ष, तीन वृक्ष हैं। इन तीनों वृक्षों की अपनी अपनी विशेषता है और जहां इनके उदाहरण दिए गए हैं वो किसी विशेष उद्देश्य से इन वृक्षों के उदाहरण दिए गए हैं। ऐसा भी कहते हैं कि ये तीनों वृक्षों का संबंध तीन देवताओं से है, ब्रह्मा विष्णु और महेश है। ब्रह्मा जी का संबंध है गुलर के पेड़ से, विष्णु भगवान का संबंध है अश्वत्थ वृक्ष से और बट वृक्ष से संबंध है शंकर जी का। तुलसीदास जी ने इन तीनों वृक्षों का वर्णन किया है रामचरितमानस, सबका संग्रह किया, इन तीनों का वर्णन किया, मैंने समस्त शास्त्रों का संग्रह बड़ी चतुरता के साथ उन्होंने किया है। तो आप देखेंगे कि जो गुल नारियल का पेड़ है उसका वर्णन भी तुलसीदास जी ने एक स्थान पर किया। वो कहते तुलसीदास जी के देखो हे भगवान, आपका शरीर एक वृक्ष के समान है और संसार एक वृक्ष के समान है और इसमें जो है वो गूलर के फल लगे हुए हैं और गूलर के फल में जैसे भूमि भरे होते हैं इसी प्रकार से ब्रह्मांड में तमाम प्राणी भूमि की तरह से भरे हैं और ते फल भक्षक कठिन कराला और जैसे कि कोई इनको हाथी एक आवे और एक गूलर का फल तोड़ करके मुंह में धर ले तो उसको तो बड़ा स्वाद आवे और उसका कोई कठिन काम उसको न लगे। ऐसे ही भगवान का जो कराल काल है वो इन ब्रह्मांडों को ऐसे ही निगल जाता है, खा जाता है, खत्म हो जाते हैं। ये जो गुजर का पेड़ जो है इसमें जो है वो संसार की रचना की बात है, संसार कैसा है, इस संसार में जीव कैसे वास कर रहे हैं और वे जीव जो है वो अपने आप को जानते ही नहीं। गुजर के भीतर का भूमना उसे क्या पता उसके कौन बड़ा विस्तार कहाँ है, कौन वृक्ष कितना बड़ा है और कहाँ संसार कैसा है, परमात्मा क्या है, जगत कैसे कम कर, तो गुजर के भीतर जितना भरा हुआ तो बस उतना ही वह संसार समझता है। ऐसे ही इस जगत के भीतर तमाम प्राणी भरे हुए हैं, अपने अपने संसार में सब घिरे हुए हैं, उसी के भीतर लुप्त हैं, उनको जितना मालूम बस खाओ पियो सो जाओ, लड़ाई झगड़ा कर लो, थोड़ा मारकाट कर लो, थोड़ा ले दे लो, लो कुछ कर लो, बस इतने संसार इसके परे क्या है कुछ पता है कुछ, बस गुजर के पेड़ की तरह से रहने वाले एक वृक्ष के लिए है ये ब्रह्मा जी के वृक्ष बस बात है। दूसरा वृक्ष जो है वो वट वृक्ष है। वट वृक्ष के संबंध में तुलसीदास जी ने बालकांड में बात कही और शुरू वहीं से किया। जब धर्म की चर्चा आई तब उन्होंने तुलसीदास जी ने कहा कि वट वृक्ष क्या है, ये तो धर्म का ही वृक्ष है। वट विश्वास अचल निज धर्मा, वट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में अचल होकर के विश्वास पूर्वक वास करना, अपने धर्म का पालन करते रहना, यही वट वृक्ष है। फिर आगे चल करके जब कथा आगे बढ़ती है तब एक दिन पार्वती जी देखती है कि शंकर जी वट वृक्ष के नीचे बड़े शांत बैठे हुए, तो वहां देखते हैं कहीं गिर बट विशाला कहीं गिर, उस गिर के ऊपर कैलाश पर्वत के ऊपर एक बहुत विशाल वट वृक्ष, उसके नीचे भगवान शंकर जी बैठे हुए शांत बैठे हुए हैं। पार्वती जी उनके पास गए, उनको प्रणाम किया और तो भगवान की कथा सुनने की इच्छा वहां व्यक्त की। तो भगवान शंकर जी क्या है, धर्म की रक्षा करने वाले हैं, यदि वट वृक्ष के नीचे वास करते हैं और धर्म के नीचे वास करने वाले हैं, धर्म ही की रक्षा करने वाले भी हैं। जब काजभूषण के पूर्वजन्म की कथा आती है तो वो जब शूद्र था और उसने उठ करके अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया तो शंकर जी ने उसको श्राप दे दिया और वहां शंकर जी से यद्यपि गुरु ने बहुत प्रार्थना की शंकर जी से, लेकिन शंकर जी कहने लगे हम क्या करें, हमारा यही काम ही है कि धर्म की रक्षा करो और उसने धर्म का पालन नहीं किया इसलिए इसको दंड देना पड़ा। तो इससे वहां पर भी ये पता चलता है कि शंकर जी धर्म के रक्षक हैं। जो बैल है, नंदी है, जिस पर शंकर जी सवार होते हैं वो भी धर्म का प्रतीक है। भागवत में कथा आती है कि जब कलिकाल आया तो कलिकाल ने किसी एक बैल के पीछे, नंदी के पीछे वो लिए तलवार दौड़ रहा था उसको मारने के लिए। परीक्षित राजा ने देख लिया और उसको मना किया तो वो कलिकाल बड़ा भयंकर रूप दिखाई दिया। तो इन्होंने पूछा कि तुम तो असाधारण व्यक्ति दिखाई देते हो, कौन हो? तो बताया कि हम तो कलिकाल हैं, कलयुग हैं। और कहा ये कौन है जिसके लंगड़े पैर के बैल के पीछे तुम पड़े हुए हो, भगा रहे हो, उसको मार रहे हो? तो कहा ये धर्म है, धर्म की चार टांगें होती हैं और सतयुग में तो चारों टांगें बरकरार रहती हैं, लेकिन त्रेता आया तो एक टांग टूट गई, द्वापर आया तो दो टांगें टूट गई, कलयुग आया तो तीन टांगें टूट गई, बस कलयुग में एक टांग का बैल बह जाता है, धर्म जो है एक चौथाई रह गया है। 75% व्यक्ति संसार में धर्मी होंगे 25% एक चौथाई व्यक्ति जो है धर्म का पालन करने का विचार करेंगे। लेकिन और ज्यादा विचार किया तो जब कलिकाल आ गया तब तो ये दशा है, जब कलिकाल ज्यादा बढ़ जाता है तब फिर ये हो जाता है कि नर सहस्रमण समूह पुरारी कोई को होई धर्म प्रतधारी, हजार की गिनती करो तब एक निकले तो कितने परसेंट हुआ हुँ? परसेंट अगर निकालो तो जीरो मैंने 0.01% 1% नहीं, 1 के पहले जीरो लगाओ, उसके पहले दशमलव रखो, 0.01 % निकला। इतने धर्मात्मा लोग इतने मिले इस संसार में न हो तो ये दशा हो जाती है। तो ये सब शास्त्रों में सब बातों का वर्णन है कि कब किस प्रकार की क्या दशा होती है और कैसा क्या है संसार क्या है। तो देखो रूपकों के द्वारा वर्णन करते रहते हैं, जब वृक्ष के द्वारा वर्णन किया तो दो वृक्ष तो ये हो गए और एक तीसरा वृक्ष और है जिसको वट वृक्ष ये जिसको अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं। अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन वेदों में दो स्थान पर आता है। एक स्थान पर अश्वत्थ वृक्ष जो है ब्रह्म रूप अश्वत्थ वृक्ष है, उसको कह सकते हैं ब्रह्म अश्वत्थ वृक्ष, जो ब्रह्म ही अश्वत्थ वृक्ष है। और दूसरा जो है वो कर्म अश्वत्थ वृक्ष। ये दो प्रकार के अश्वत्थ वृक्षों का वर्णन है। जो ब्रह्म है परब्रह्म परमात्मा है वो परमात्मा तो परमात्मा है, बीज रूप में वही है, और वही जैसे बीज से वृक्ष बन जाता है वैसे ही परमात्मा ब्रह्मांडों का रूप जगत का रूप धारण कर लेता है। इसलिए सब जगत क्या है वो परमात्मा का ही रूप है, ऐसा वर्णन करने के लिए उपनिषदों में कठोपनिषद में जैसे आता है कि ऊर्धमूल तो अवाक शाखा एशो अश्वत्थ सनातन कहते हैं। ऊर्धमूला जिसकी की जड़ें ऊपर हैं, अवाक शाखा नीचे की तरफ उसकी शाखाएं हैं, एशो अश्वत्था सनातन ये सनातन अश्वत्थ है, हमेशा से चला रहा प्राचीन काल से। और तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, और वही तो उस परमात्मा को प्राप्त करने की सामर्थ्य है। साधन सामर्थ्य क्या है शुक्रम, कि वही परमात्मा की शरण में जाओ उसी की सहायता लो तब तुमसे सहायता साधन बनेगा और साधना में सफलता मिलेगी। इसलिए तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, और वही अश्वत्थ वृक्ष जो है वही ब्रह्म है, क्योंकि मूल में वही ब्रह्म है। इसलिए तद ब्रह्म ब्रह्म और तदेव अमृत मशंते, और वही जो है वह अमृत स्वरूप है। मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है, ये उसका फल भी। इस प्रकार से एक अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया। तो जब ये कहते हैं ऊर्ध्वमूला, तो कभी कभी आचार्यों ने ये कहा कि ऊर्ज प्रणाम क्या है, ऊर्ज प्रणाम फल ऊपर जिसकी जगह ऊपर हो, इसे साध्य कर सुधा वैसे ऊर्ज के माने है परमात्मा। क्यों कि परमात्मा क्यों है कि परमात्मा सुप्रीम सेल्फ, परमात्मा के परे क्या है उससे परे कुछ भी नहीं, उससे महान कुछ भी नहीं है, इसलिए उसी को ऊर्ध भी कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ भी कहते हैं, सबसे महान भी कहते हैं। उस परमात्मा ही जिसकी की जड़ें हैं और ये नाम रूपात्मक ये जगत जो जो है उसी से उत्पन्न हुआ, उसका विस्तार है। लेकिन है उनका जैसे कि यह उपनिषद आता है वैसे ही भगवान ने भी बोल दिया और वही सप्तावली का प्रयोग कर दिया। ऊर्ध्वमूला बना शाखन अश्वत्थन प्राहुर अध्ययन, उसने कहा था ऐशो अश्वत्था सनातन, ये सनातन अश्वत्थ है क्योंकि क्योंकि उपनिषद था, इसलिए उपनिषद को किसी दूसरे उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं। उसने कह दिया कि देखो ये तो पीपल का वृक्ष सनातन पीपल का वृक्ष है। भगवान ने उसी को शब्दावली को कैसे बदला, अश्वत्थम प्राहु अध्ययन, सनातन की जगह अध्यय हो गया और प्राहु के मैंने ये भी बता दिया कि यह उपनिषद की ही बात है जो हम तुमको बता रहे हैं। ये इस प्रकार का ये है पीपल का वृक्ष एक है जो अपने वेदों में शास्त्रों में कहा गया है तो ये हम तुमको बताते हैं। और बात वही कैसा है, ये ऊर्ध्वमूला था शाखन, पहले उसमें उपनिषद में कहा गया था ऊर्ध्वमूलो अवाक शाखा, अवाक के माने के नीचे, इसमें भी बोले ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा, इसकी शाखा नीचे की तरफ। अब शाखा, शाखा क्या है, ब्रह्म से उत्पन्न हुए, जब वृक्ष उत्पन्न होगा तो उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्म से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मा उस वृक्ष की का तना है। अब हमारे सबसे ऊपर परमात्मा, और परमात्मा से नीचे की तरफ वृक्ष की शाखाएं फैलती हैं और उत्पन्न होती, तो पहले तना पैदा हुआ, तो तना पैदा हुआ पुराने क्या पैदा हुआ, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने फिर जगत की रचना की, जब रचना की तो तमाम शाखाएं बन गई, जब तमाम शाखाएं बन गई तो उनमें फिर शाखाओं पर पत्ते लगे, फिर फूल लगे, फिर फल लगे, ये सब लगे उसमें। तो अब ये जैसे उपनिषद में कहा गया था वैसे ही भगवान ने भी उसका नाम ले दिया। थोड़ा सा भगवान ने थोड़ा सा उसमें विस्तार किया, इस श्लोक में कुछ बात कही, कुछ आगे श्लोक में बात कही, वहां वो जितनी वेद में बात कही थी उतनी ही नहीं रखी बल्कि व्याख्या भी कर दी कि देखो उसका तात्पर्य क्या है। तो यहां जैसे कहते हैं छंदांश ये से परमाणी, तो ये छंदांश ये परमाणी ये बात कहां से आई, ये ऋग्वेद की एक और मंत्र है, वहां से ये लिया गया। ऋग्वेद में बोलते हैं, कहते हैं अश्वत्थो गुहो विशदनम, अपर्णो वो वसतिष्कृता, ये ऋग्वेद के का एक मंत्र है, उसमें कहते हैं अश्वत्थो गुहो विशदनम, एक पीपल का पेड़ है जो पीपल के पेड़ का नगर है, पीपल का पेड़ क्या मन एक नगर की तरह से, अब पीपल का पेड़ तो है ही पहले जगत, और फिर उस पीपल के पेड़ को भी कहते हैं एक नगर की तरह से, निषदनम वास करने का स्थान है निषदनम, और फिर कहते हैं कि परिणे वो वशयति से कृता, और जो कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, सकाम कर्म करने वाले हैं, वे लोग, वे प्राणी लोग उस वृक्ष रूपी नगर में पत्ते के ऊपर वास करते हैं, एक एक पत्ता एक एक भवन, जैसे एक नगर हो तो नगर में बहुत से मकान होंगे, तो ऐसे वृक्ष है तो वृक्ष में एक पत्ता है, तो जीव कहां वास करता है, पत्ते के ऊपर वास करता है। अब देखो उसमें क्या कहना चाहते हैं, अगर किसी को वेदांत की पूर्व भूमिका का ध्यान हो तो उसमें मालूम हो जाए कि भाई जैसे चिड़िया जो है पेड़ के ऊपर रहती हैं, है किसी प्रकार से जो है वो हो सब प्राणी जो है संसार रूपी वृक्ष में चिड़ियों की तरह से बात करते हैं, एक शाखा से कूद के दूसरी शाखा चले गए, दूसरी शाखा से कूद के दूसरी शाखा चले गए। एक विशेष बात इसमें यह है कि इस पीपल के पेड़ के ऊपर जो प्राणी वास करते हैं वो तमाम पत्ते हैं, तो जितने तमाम पत्ते हैं उतने तमाम प्राणी भी हैं, हर प्राणी जो है एक एक पत्ते के ऊपर वास करता है। अब पत्ता में क्या विशेषता पीपल के पत्ते पर, पीपल पात सरिस मंडोला, देखो आपके पत्ते को जब कहीं दुनिया हवा में चल रही हो तो आप पीपल के पत्ते को देखोगे तो वो हिल रहा होगा, जिस पीपल का पत्ता इतना हिलता है उसके ऊपर किसी का वास हो तो वो रहने वाला उसके ऊपर उसके पैर कितने जमेंगे, कितनी स्थिरता से रह सकेगा, उसका चित्त डोलता ही रहेगा, दावा डोल रहेगा हमेशा। बस ये दशा जीवों की प्राणियों की, तो वहां जो पत्ते के ऊपर जो जीवों का वास था ऋग्वेद में, यहां भगवान क्या कहते हैं कि देखो छन्नांश ये से परणानी, उस वृक्ष के जो पत्ते जो हैं वो छंद हैं। छंद के माने क्या, कि जितने वैदिक मंत्र हैं जो कर्मकांड का निरूपण करने वाले हैं, शुभाशुभ कर्म धर्माधर्म का निरूपण करते हैं, या धर्म के लिए विधान बताते हैं, यज्ञ का विधान बताते हैं, यज्ञ करते हुए मंत्र उच्चारण के लिए मंत्रों का विधान करते हैं, ये सब मंत्र क्या है, तमाम यज्ञों का वर्णन क्या है, ये सब उस वृक्ष के पत्ते के समान है। और छंदांश के माने छंद चाहेंगे वो जो पत्ते के समान है, लेकिन छंदांश का एक तात्पर्य और है, छादियति छंदा, जो ढकले उसे छंद कहते हैं। हालांकि व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन में पड़ करके एक बंधन में पड़ा हुआ है, संसार के चक्र में पड़ा हुआ है, दुख जाल में भगव जाल में पड़ा हुआ है, लेकिन वेदों ने क्या किया कि मनुष्य के उन अशुभ कर्मों पर, उन दूषित कर्मों पर एक आच्छादन डाला। मनुष्य कर्म तो कर ही रहा था, कर्म के बंधन था ही। अब वेद क्या बोले कि देखो तुम ऐसा धर्म का पालन करो, ऐसी तुम यज्ञ करो तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। तो वो तो वैसे ही रो रहा था अपने कर्म करते करते, वेद ने थोड़ा सा उसके आंसू पोंछने के लिए स्वर्गवाद का वर्णन कर दिया। तो जिस कर्म के चक्र में वो पड़ा हुआ था उसकी बुराइयां ढकी थोड़ी। तो वेद जो है कर्म की बुराइयों को ढकने वाले। वेद के दो भाग, कर्मकांड ज्ञानकांड। कर्मकांड क्या करता है, कर्म की बुराइयों को ढकता है और अच्छे कर्म बता देता है। लेकिन जब अच्छे कर्म करता हुआ स्वर्गात तक व्यक्ति पहुंचे तो वही वेद फिर उसको स्वर्ग की आसक्ति से भी छुड़ा करके परमात्मा तक ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ज्ञानकांड आ जाता है, कर्मकांड से काम नहीं चलेगा, परमात्मा का ज्ञान भक्ति प्राप्त करो, परमात्मा की प्राप्ति करो। तो आगे जब कर्मकांड का भाग भी है उसका भी अंतिम प्रयोजन ज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति है। इसलिए यहां कहते हैं कि छंदांशी से परनामी। अब ये कहते हैं कि यष्टम वेद सवेदवित, जो व्यक्ति इस बात की जानता है, जो वेदों के राशि को समझता है, वेद के एक एक अक्षर ना भी पढ़ो लेकिन वेद की बात समझ में आ जाए तो समझ लो कि वेद को जानता है। जितनी बात अगर किसी व्यक्ति को समझ में आ जाए कि ये कैसा, ये पीपल का वृक्ष कैसा है, परमात्मा कैसा है, ब्रह्मा जी कैसे हैं, समस्त प्राणियों की रचना हुई ये प्राणी कैसे हैं, इन प्राणियों का संसार कैसा है, इनके कर्म किस प्रकार के हैं, स्वर्ग नरक कैसा है, मुक्ति कैसी है, अगर ये सब बातें जिसको मालूम हो तो व्यक्ति कैसा वेद भी वेद को जानने वाला। एक बात और ध्यान देना, अभी यहां यस्तम वेद सवेदवित, वेद की दुहाई देते हुए भगवान ने पहला श्लोक शुरू किया है और अंत तक ये है वेद की दुहाई देते रहेंगे भगवान। इसका उपक्रम भी इस अध्याय का वेदवित से होता है और जब प्राहु बोलते हैं तब भी वेद ऐसे ही कहते हैं, प्राहु का वेद ऐसा कहते हैं और अंत में जो ये है वेद की बात अध्याय के अंत में भी आती है। तो उपक्रम उपसंहार में इस अध्याय का ये वैदिक पाठ है एक प्रकार से। ये 15वां अध्याय क्या है, वेद का ही सार है, वेद की प्रधानता को देकर के इस अध्याय में वर्णन किया गया है। इसलिए भोजन करने के पहले जो इसका पाठ करते हैं तो मानो वैदिक पाठ कर रहे हैं, उसी की महिमा गा रहे हैं। इस प्रकार से ये है अध्याय का ध्यान रखना चाहिए, इस अध्याय का महत्व को स्मरण रखें। अब हम अगले श्लोक में जाएं, उसके पहले आपको हमने बता दिया कि देखो तुलसीदास जी ने तीन प्रकार के वृक्षों का वर्णन किया है, गुलर के पेड़ की बात आपको बता दी और वट वृक्ष की बात आपको बता दी और पीपल का वृक्ष रह गया। तो तुलसीदास जी ने पीपल के वृक्ष का भी वर्णन किया और बहुत सुंदर वर्णन किया, और उस वर्णन को अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं भगवान ने गीता में जो कुछ कहा उसकी भी व्याख्या तुलसीदास जी ने कर दी है। देखो जो वेदों में कहा गया उसकी व्याख्या तो भगवान ने गीता में कर दी, मैंने उसका विस्तार कर दिया, स्पष्टीकरण कर दिया, और गीता में जो स्पष्टीकरण नहीं हो पाया था वो फिर तुलसीदास जी ने कर दिया। क्या कर दिया, तुलसीदास जी कहते हैं लभ प्रफुल्लत नरम मुख संसार विपत नमा महे, ये इस प्रकार से जो है संसार वृक्ष, तुलसीदास जी ने कहा कि संसार ये वृक्ष क्या है, ये तो संसार वृक्ष है। जैसे ऋग्वेद में हमने आपको धर्म बताया, उन्होंने ये कहा कि देखो ये है ये अश्वत्थ वो निषदनम अपरणे वो दशतस्कृत, जो कर्म करने वाले व्यक्ति हैं वो इस वृक्ष पर वास करते हैं। मैंने कर्म संबंध था, जो कर्म है वही कर्म ही कक्षिंग संसार है, कर्म से ही वासना है और वासनाओं के अनुसार जो राजदेश है और उस राजदेश से बना हुआ जो हमारी कल्पना है वो संसार है। तो कर्म और संसार एक ही बात है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों में जिस कर्म की बात कही गई उसको संसार करके समझते। अब यहां बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं, जगत और संसार का ध्यान रखो कि जगत का तात्पर्य ईश्वर की जो सृष्टि है वो भी वट वृक्ष के समान है, लेकिन संसार जो जीव की रचना, जीव ने अपने संसार रचना कर ली है वो भी वट वृक्ष के समान है। तो जो कर्म रूपी वट वृक्ष है उसके भी दो रूप हो सकते हैं, एक जीव कृत और एक ईश्वर कृत। जो ईश्वर का जो वट वृक्ष है उसको पर ब्रह्मा और देवता और तमाम लोक लोकांतर इस प्रकार की रचना जो हुई है वो तो ईश्वर कृत वट वृक्ष की है, और जीव कृत जो वट वृक्ष है वो कर्मजन्य है और कर्मों का सुभाष कर्मों का विस्तार है, और उसके उनके साथ साथ कर्म के पाप में रूपी फल हैं और उनका भी फल सुख दुख आदि है, और स्वर्ग नरक इत्यादि ऊपर नीचे के लोगों में आवागमन है। ये जीव का जो वो हो वट वृक्ष हो गया। तो दूसरी राशि कहते हैं कि देखो अव्यक्त मूल मनादितर, ये संसार वृक्ष जो है अव्यक्त है, अव्यक्त मैंने किसी को दिखाई नहीं देता, संसार रहते ही लोग लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता कि हम संसार में है। मूलम अनादि और इसकी जड़ अनादि, देखो अनादि के माने अगर किसी से पूछो कि हम जीव भाव में कब से आ गए, हम कब से कर्म के बंधन में पड़ गए, तो ऊपर क्या है अनादि, संसार के चक्कर में हम कब से आ गए कि अनादि काल से, इसलिए यह अद्यतन मूलम अनादि और तर त्वक, ये ऐसा तो ये अनादि वृक्ष है और त्वक चार निगमा गम भने, और उसके जो है ये त्वक माने इसके वृक्ष के ऊपर जो छाल चली हुई है वो क्या है, बोले कि ये है चार वेद है, निगमागम चार वेद जो है वो उसकी चार त्वचाएं हैं, छाल है वृक्ष की। अब देखो छाल का नाम अन्य पर कहीं नहीं आया, लेकिन तुलसीदास जी को छाल भी दिखाई दी, और ये बोले की चारों वेद जो है वो इस कर्म की चारों वो छाल है। मैंने वेदों से ही कर्म की उत्पत्ति होती है, और जीव जो है जिस कर्म में बंधे हुए हैं चाहे अशुभ कर्म कर रहे हो चाहे शुभ कर्म कर रहे हो, उनका सबका निरूपण चारों वेदों में है, इसलिए इन चारों वेदों का भी संबंध कर्म से जुड़ा गया। फिर कहते हैं कि देखो शतकंद, इसकी जो है इसकी शाखाएं जो है छह शाखाएं इसकी निकली, इसकी छह शाखाएं क्या हो गई, जो छह शास्त्र हैं वो इसकी छह शाखाएं हो गई, न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत, ये उसकी जो छह शाखाएं उस वृक्ष की हो गई। खतकंद शाखा पंचवीस, और फिर उसकी छत पने छह तो उसकी वो शाखाएं निकली थी, और उन शाखाओं के प्रकारांतर शाखाएं निकली वो 25 हो गई, एक तना हुआ और उस तने की छह डालें निकली, उन छह डालों के फिर और शाखाएं खुद करके 25 हो गई। तो बोले कि पंचवीस अनेक पर्ण सुमन घने, वो 25 जो शाखाएं हो गई, 25 शाखाएं आप इसमें देखोगे, पंच महाभूत पांच कर्मेंद्रियां पांच प्राण पांच ज्ञानेन्द्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार चार ये और पांच मैं निर्व्याप्त चैतन्य, ये 25 हैं, ये 25 जो ये है उसकी 25 शाखाएं हो गई। और फिर अनेक पर्ण सुमन घने, अपने संभव से पत्ते और फिर फूल बहुत से उसमें लगे, घने खूब लगे उसमें वो। अब ये सब क्या है, कहते हैं कि फल जुगल विधि, उसमें जो फल है वो हो जुगल विधि, कि दो प्रकार के उसमें फल वृक्ष में लगते हैं संसार वृक्ष में। कैसे, कट मधुर हो, कड़वे फल ही लगते हैं और मीठे फल भी लगते हैं, माने जो दुख है वो कड़वा फल है और जो सुख लग रहा है वो मीठा फल है। सुख दुख के जो यही भोग उसमें होते रहते हैं। बदल दिए कट मधुर हो, बेल अतील से ही आश्रित रहे, और कहते हैं कि इसके ऊपर जो वो हो, एक इस वृक्ष के ऊपर एक बेल चढ़ी हुई है और ते ही आश्रित रहे, ये बेल वृक्ष के आश्रय में रहती है। जैसे एक वृक्ष हो, वृक्ष के पास कहीं एक बेल हो तो बेल पेड़ के ऊपर चढ़ जाए, तो बेल के बिना पेड़ की शाखा के उसमें लटके हुए बिना अलग से रह नहीं सकती, तो कहते हैं कि ते ही आश्रित रहे। जैसे कि बेल वृक्ष के आश्रय में होती है, तो ऐसी एक बेल है जो कि इसके आश्रित। ये बेल क्या है, ये माया है, अविद्या है, जो कि इसके आश्रित है। किस प्रकार से ये वृक्ष हुआ, फिर बोले कि पल्लवत फूलत फलत नित, ये रोज ही पत्ते, नए नए पत्ते निकलते रहते हैं, नए नए फूल निकलते रहते हैं, नए नए फल निकलते रहते हैं, और रोज रोज व्यक्तियों को वो सब भोगने पड़ते हैं। नित इस प्रकार का ये नित्य संसार, ये नित्य संसार है। विकट न मानहे, कह भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आपका ये वृक्ष ये अद्भुत वृक्ष है, ये सृष्टि बड़ी अद्भुत है, ये भगवान आपको प्रणाम है, ये संसार वृक्ष को हम जानते हैं। पर देखो ये संसार वृक्ष में शाखा प्रकार शाखा सबका वर्णन कर दिया कौन कहां हो, लेकिन ये तुलसीदास से स्पष्ट कर दिया कि संसार कैसा है, ये वृक्ष क्या है, अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं। संसार नित्य संसार विटप, ये संसार विटप है, संसार रूपी वृक्ष है। संसार रूपी वृक्ष में हर जीव अपने अपने संसार में ग्रसित है, फंसा हुआ है और उसी में बास कर रहा है। उससे छुटकारा पाने के लिए जो इस वृक्ष का जो मूल कारण परमात्मा है, उस परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। संसार में न पड़े परमात्मा का स्मरण, ये समझाने के लिए ये श्री कथा सुनते हैं।